अरुणिमा उस अनजान शख्स की कैद में थी। उसके हाथ पैर खुल चुके थे, फिर भी वो आदमी उसके सामने खड़ा था, अपनी निगाहों से उसे बंदी बनाए हुए। अरुणिमा घबराई और बोली, तुमने मुझे यहाँ क्यों किडनैप किया है? क्या तुमने ये सब मेरे हस्बैंड की वजह से किया है? देखो, मेरा उनके काम से कोई लेना देना नहीं है। वो आदमी अरुणिमा की बात सुनकर जोर से हंसा, हंसी रोकते हुए बोला, तुम अपने पति की बात कर रही हो? तुम्हें लगता है कि तुम्हें यहाँ किडनैप तुम्हारे पति की वजह से किया गया है? और इतना कहकर वो फिर से हंसने लगा। उसे यूं पागलों की तरह हंसते देख अरुणिमा और भी घबरा गई। उसने मन में सोचा, क्या ये आदमी पागल है? ये ऐसे क्यों हंस रहा है? हंसी पर काबू पाते हुए वो आदमी फिर बोला, कितनी बदनसीब हो तुम। तुम्हें अपने जीवन में कभी वो मिला ही नहीं जो तुमने चाहा था। एक पति मिला तो वो भी तुम्हारी परवाह नहीं करता। तुम यहाँ मेरे पास कैद में हो, लेकिन उसे तुम्हारी कोई फिक्र नहीं है। वो कभी तुम्हें बचाने भी नहीं आएगा। जहाँ बैठी हो वहीं से अपने उस पति के बारे में सोचना बंद कर दो, क्योंकि ना तो उसे तुम्हारी परवाह है और ना ही तुम उसके लिए कोई मायने रखती हो। उस आदमी की बातें सुनकर अरुणिमा की आंखें डर और हैरानी से फटी की फटी रह गईं। उसे ये सब कैसे पता? शायद उसके चेहरे के डर को पहचानकर वो आदमी फिर मुस्कुराया और बोला, तुम यही सोच रही हो ना कि मुझे ये सब कैसे पता? तो सुनो, मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ। सिर्फ आज नहीं, तुम्हारे बीते कल तक की हर बात मुझे पता है। तुम्हारे हाई स्कूल से लेकर कॉलेज तक, यहाँ तक कि उस लड़के देव के बारे में भी। अरुणिमा की धड़कन थम गई। उसकी आंखें इतनी चौड़ी हो गई मानो पल में बाहर निकल आएंगी। देव, इसके बारे में इसे कैसे पता चला? जबकि देव के बारे में तो उसने कभी किसी को नहीं बताया था, यहाँ तक कि उसके पेरेंट्स को भी नहीं। देव, वो लड़का जिससे अरुणिमा कॉलेज के दिनों में प्यार करती थी, जिसके साथ वो अपनी जिंदगी बिताने का सपना देखती थी, लेकिन कई बार सपने सिर्फ सपने ही रह जाते हैं। वो आदमी अरुणिमा के चेहरे पर फैली दहशत को देखकर और ज्यादा खुश हो रहा था। उसने अपने हाथ कमर पर रखे और हंसते हुए कहने लगा, हाँ, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। तुम्हारा गुजरा हुआ कल से लेकर आज तक सब कुछ मेरे सामने खुली किताब की तरह है। तुम्हारी पूरी जिंदगी तुमने अपने पापा की अच्छी बेटी बनने में बिता दी, क्योंकि उन्होंने तुम्हें गोद लिया था और तुम्हारी जिंदगी उनके एहसान की कर्जदार थी। इसलिए तुमने अपने पापा की मर्जी के मुताबिक आस्तिक रायचंद जैसे बड़े माफिया से शादी कर ली, क्योंकि उसका खानदान अंडरवर्ल्ड और माफिया से जुड़ा हुआ था, जो तुम्हारे पिता को एक ऊंची पोजीशन दिला सकता था। अपने पिता की डूबती हुई कंपनी और उनके सपनों को बचाने के लिए तुमने अपने प्यार का गला घोंट दिया और चुपचाप उस इंसान से शादी कर ली जिससे तुम ठीक से जानती तक नहीं थी। लेकिन असली खेल तो शादी के बाद शुरू हुआ, जब आस्तिक ने तुम्हें अपनी बीवी तो बनाया पर कभी अपनी जिंदगी का हिस्सा नहीं माना, क्योंकि वो पहले से ही किसी और लड़की के चक्कर में था। इसीलिए वो तुम्हें हर कदम पर जलील करता रहा और ये एहसास दिलाता रहा कि तुम उसके घर में पड़ी हुई कोई बेकार चीज हो। तुम्हारी जिंदगी ऐसी हो गई है जिसे तुम जीना तो चाहती हो लेकिन जी भी नहीं पा रही हो। एक तरफ तुम्हारे पेरेंट्स हैं जिन्होंने तुम्हें गोद लेकर तुम पर एहसान किया था, और दूसरी तरफ है आस्तिक जो तुम्हें जीते जी नरक दिखा रहा है। उस आदमी की बातें सुनकर अरुणिमा का पूरा शरीर सुन पड़ गया। वो उसकी जिंदगी के बारे में एक एक बात जानता था, हर वो पहलू जिसे अरुणिमा ने कभी किसी से साझा तक नहीं किया था। अचानक कमरे का माहौल गर्म हो गया। अरुणिमा का दिल जोरों से धड़क रहा था और उसके चेहरा पसीने से भीग चुका था। वो उस आदमी के चेहरे से नजरें हटा ही नहीं पा रही थी जो उसके सामने उसकी पूरी जिंदगी खोलकर रख दे रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कोई उसके बारे में इतना कुछ कैसे जान सकता है। वो कोई मशहूर लड़की नहीं थी, ना ही उसने कभी खुद को किसी के सामने जाहिर किया था। हाँ, उसके पापा और आरती की वजह से वो कुछ प्रभावशाली लोगों की नज़र में जरूर थी, लेकिन अरुणिमा का उनसे कोई लेना देना नहीं था। यहाँ तक कि उसका कोई दुश्मन भी नहीं था। उसे ये आदमी और उसके पिता के बारे में भी सब कुछ पता था। अरुणिमा डरते हुए कांपती आवाज में बोली, क्या तुम ये सब मेरे पापा की वजह से कर रहे हो? क्या तुम उन लोगों में से हो जिन्होंने हमारे पापा की कंपनी में पैसे लगाए थे और फिर कंपनी डूबने पर तुम्हारा शेयर भी डूब गया था? वो आदमी हंसते हुए बोला, ऐसा कोई है ही नहीं जो मुझे धोखा दे सके। अगर मुझे कभी बिजनेस में नुकसान होता भी है तो मैं सामने वाले के जिस्म के एक एक हिस्से को बेचकर अपना नुकसान वसूल करता हूँ। अरुणिमा चीख पड़ी, तो फिर तुम हो कौन और क्यों मेरे साथ ये सब कर रहे हो? अगर तुम मुझे मारने ही वाले हो तो कम से कम इतना तो बता दो कि तुम मुझे मार क्यों रहे हो? उस आदमी के चेहरे पर अभी भी एक रहस्यमय मुस्कान थी और वो हंसते हुए कहता है, अच्छा, तो तुम्हें मेरा परिचय चाहिए? कोई बात नहीं, मैं तुम्हें खुशी खुशी अपना परिचय देने को तैयार हूँ। वो क्या है ना, जब तक मैं तुम्हें अपने बारे में बताऊंगा नहीं, तुम्हें पता कैसे चलेगा कि मैं कौन हूँ? तो मैं तुम्हें बताता हूँ, मेरा नाम सूर्या मल्होत्रा है। ये कहने के बाद वो आदमी अपनी बत्तीसियां चमकाते हुए अरुणिमा को देख रहा था, लेकिन अरुणिमा अब भी उसे भ्रमित नजरों से देख रही थी। क्योंकि ना तो वो इस नाम को जानती थी और ना ही उसने इससे पहले कभी ये नाम सुना था। वो हैरान थी कि आखिर कौन है ये सूर्या मल्होत्रा और क्यों क्यों वो अरुणिमा के पीछे पड़ा हुआ है। सूर्या हंसते हुए कहता है, फिक्र मत करो, जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूं, तुम मरोगी या नहीं ये सब मेरी गर्लफ्रेंड पर डिपेंड करता है। अभी तक उसने मुझे कहा नहीं है कि मैं तुम्हें जान से मार दूं, तो तब तक के लिए तुम सुरक्षित हो। कौन है तुम्हारी गर्लफ्रेंड? इस सवाल ने सूर्या की मुस्कान धीरे धीरे कम कर दी और वो अरुणिमा को गुस्से से देखने लगा। ऐसे गुस्से से देखता पाकर अरुणिमा डर गई, लेकिन सूर्या अपनी सख्त निगाहों से देखते हुए कहता है, तुम सवाल बहुत करती हो ब्यूटीफुल लेडी, इतने सवाल मुझे पसंद नहीं है। अरुणिमा ने धीरे से अपनी पलकें झुका ली और अपनी आंखें बंद करते हुए मन में कहने लगी, हे भगवान मेरी मदद करो, मैं ऐसे नहीं जाना चाहती। मुझे अपने बच्चों के साथ जिंदगी जीनी है, मुझे अपने बच्चों की परवाह है, मुझे बचा लो, मेरे बच्चों को बचा लो। आस्तिक कहाँ हो? क्या तुम्हें मेरी इतनी भी परवाह नहीं कि कम से कम जिंदा रखने के लिए ही मुझे ढूंढो? तभी बाहर से अंधाधुंध गोलियों की आवाज आई। चारों तरफ गोलियों की आवाज से वहां का शांत माहौल अचानक से भयंकर हो गया। अरुणिमा डरकर ऊपर की तरफ देखने लगी और वो आदमी जो अरुणिमा को देख रहा था उसकी आंखों में भी हैरानी थी। बाहर से लोगों की चीखने और चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। फिर दरवाजा खुला और एक आदमी अंदर आया। वो पसीने से बुरी तरह भीगा हुआ था और उसका चेहरा हताशा से भरा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे वो अपनी जान बचाकर भागा हो। वो पसीने से तर था, यहां तक कि उसके कपड़ों पर खून के छींटे भी थे। सूर्या ने उसे देखा और दांत पीसते हुए कहा, क्या हुआ? बॉस हमें निकलना होगा। उस आदमी की बात सुनकर अरुणिमा और सूर्या दोनों एकदम से हैरान हो गए। सूर्या गुस्से में बोला, क्या बकवास कर रहे हो, हमारे आदमी कहाँ हैं? वो आदमी डरती हुई आवाज में बोला, बॉस हमारे पास बस मुट्ठी भर आदमी है, लेकिन सामने से शैतानों की फौज आ रही है। हम इतने कम लोग इतनी बड़ी सेना का मुकाबला नहीं कर सकते। हम चारों तरफ से दुश्मनों से घिरे हुए हैं, यहां से भागना ही बेहतर होगा। उसकी बात सुनकर सूर्या ने उसका गिरेबान पकड़ लिया और गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, सूर्या मल्होत्रा किसी को पेट दिखाकर नहीं भागता। जिंदा रहेंगे तो फिर से मुकाबला कर लेंगे, क्योंकि सामने से जो आ रहा है वो इंसान नहीं, एक शैतान है, एक बीस्ट।
अरुणिमा बुरी तरह से डर गई थी। उसकी कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। वहां का माहौल इतना गंभीर हो गया था कि वो तो कुर्सी से उठ भी नहीं पा रही थी। उसके हाथ पैर कांप रहे थे। उसने जल्दी से अपने पेट को देखा और दोनों हाथों से उसे ढक लिया। क्या सूर्या का कोई दुश्मन है? क्या कोई उसे मारने आया है? कहीं इन सब के चक्कर में मुझे और मेरे बच्चों को कुछ ना हो जाए? भूम! एक तेज धमाके ने वहां का माहौल पूरी तरह दहशत में बदल दिया। अरुणिमा जिस कमरे में थी वहां एक छोटा सा रोशनदान था जिससे थोड़ी रोशनी आ रही थी। अचानक से वो रोशनदान फट गया और आग के लपटे खंदर की तरफ आने लगी। ये नज़ारा देखकर अरुणिमा कांप उठी और सूर्या भी हैरान रह गया। उसने जल्दी से अपनी गन निकाली और अगले ही पल कमरे से बाहर निकल गया। जाते जाते उसने कमरे का दरवाजा इतनी जोर से खींचा कि वो अपने आप लॉक हो गया। अरुणिमा डर गई। जैसे ही उसने सामने आग की लपटों को कमरे में आता हुआ देखा, वो अचानक होश में आ गई। उसने देखा कि सूर्या अपने आदमी के साथ वहां से जा चुका है और दरवाजा बंद है। वो जल्दी से खड़ी हुई और दीवार का सहारा लेते हुए दरवाजे के हैंडल को पकड़ा, लेकिन वो खुल ही नहीं रहा था। शायद वो बाहर से लॉक हो चुका था। अरुणिमा घबरा गई थी। वो इस कमरे में अकेली कैद थी और आग की लपटें धीरे धीरे कमरे में बढ़ती जा रही थीं। उसने उस कुर्सी को देखा जिस पर वो बैठी हुई थी। उसने सोचा कि उस कुर्सी से दरवाजे का हैंडल तोड़ा जाए ताकि वो बाहर निकल सके। वो जल्दी से कुर्सी के पास आई और उसे उठाया, लेकिन जैसे ही वो कुर्सी लेकर दरवाजे की तरफ बढ़ी, एक तेज लपट कमरे में फैल गई और अरुणिमा के चेहरे के बिल्कुल पास से होकर गुजरी। अरुणिमा एकदम से पीछे की ओर गिर पड़ी। अगर वो सही समय पर नहीं गिरी होती तो इस वक्त वो लपटों में घिर चुकी होती। देखते ही देखते कमरे की दीवारों पर आग फैलने लगी और अरुणिमा जमीन पर रेंगते हुए पीछे की तरफ खिसकती रही। वो अपने पेट पर हाथ रखे अपने बच्चों की सलामती की दुआ मांग रही थी। मेरे बच्चे, मेरे बच्चे, अरुणिमा रोते हुए बस यही फुसफुसा रही थी। उसे लगा कि शायद यही उसका अंत है, अब वो अपने बच्चों के साथ इस दुनिया से चली जाएगी। कमरे में गर्मी इतनी बढ़ गई थी कि अरुणिमा धीरे धीरे होश खोने लगी। उसकी आंखें बंद हो रही थीं और आग की वजह से उसका सिर चकरा रहा था। वो बेहोश हो रही थी, लेकिन होश में रहने की पूरी कोशिश कर रही थी। उसे सुनाई दे रहा था कि बाहर बहुत सारी कदमों की आवाजें और गोलियों की बौछार हो रही है। अचानक से अरुणिमा जिस कमरे में थी उसका दरवाजा एक तेज आवाज के साथ खुला। अरुणिमा की आंखें धुंधली हो रही थीं। उसे ठीक से कुछ नजर नहीं आ रहा था, पर सामने से कोई शख्स आग के बीच से कमरे में दाखिल हुआ।
अरुणिमा को धुंधली धुंधली आकृति किसी पुरुष की लग रही थी। तभी वो इंसान अरुणिमा के पास आया और उसे अपनी गोद में उठा लिया। अरुणिमा इतनी ज्यादा बेसुध हो चुकी थी कि वो धीरे धीरे बड़बड़ा रही थी, बच्चा मैं बच्चा। असल में अरुणिमा कहना चाहती थी मेरा बच्चा, मगर उसकी हालत ऐसी थी कि सुनने वाले को यही लगा कि वो खुद को बचाने की बात कर रही है। जब उस शख्स ने अरुणिमा को गोद में उठाया तो अरुणिमा ने अपने हाथ उसकी गर्दन के चारों ओर डाल दिए और जैसे ही उसे वो एहसास हुआ वो उसके सीने से लग गई। इस खुशबू में वो पहले भी लिपट चुकी थी, इसलिए ये खुशबू उसके लिए अनजान नहीं थी। उसने धीमे से फुसफुसाते हुए कहा, आस्तिक। ये कोई और नहीं बल्कि आस्तिक रायचंद ही था जो अरुणिमा के लिए वहां तक आया था। उसने अरुणिमा को अपनी बाहों में देखा और तुरंत सीने से लगाते हुए कहा, हाँ ये मैं ही हूँ, मैं आ गया हूँ। आस्तिक ने जल्दी से अपना ओवरकोट उतारा और अरुणिमा को उसमें ढक दिया। फिर उसने अरुणिमा को अपनी गोद में उठाया और कमरे से बाहर निकलने लगा। आग अब पूरे कमरे में फैल चुकी थी, लेकिन आस्तिक अरुणिमा को अपनी बाहों में लिए वहां से बाहर निकल गया। धीरे धीरे अरुणिमा का पूरा शरीर ढीला पड़ गया और वो बेहोश हो गई।